एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, सैमुअल ग्रीनगार्ड की द इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
हाँ, और ये टॉपिक आजकल इतना रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब IoT अब सिर्फ कोई टेक्निकल चर्चा नहीं रह गई है।
सही बात है,
ये तो धीरे धीरे हमारे घरों में, हमारे शहरों में, हमारी जेबों में पहुंच रहा है ना?
बिल्कुल, ये अब कोई दूर की कौड़ी नहीं बल्कि आज की अभी की हकीकत बनता जा रहा है। हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया को जैसे मिला रहा है।
तो इसे समझना मतलब एक तरह से आने वाले कल को समझना है।
हाँ, और ये बदलाव इतने गहरे हैं कि इनको अनदेखा करना मतलब
मुश्किल है। तो इसी को समझने के लिए आज हम सैमुअल ग्रीनगार्ड की नजर से देखेंगे।
अच्छा,
ग्रीनगार्ड कोई नए लेखक नहीं है, वो एक अनुभवी पत्रकार हैं, लेखक हैं, रिसर्चर हैं, और दशकों से वो टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सोसाइटी के इंटरसेक्शन पर लिखते आ रहे हैं।
और शायद यही बात उन्हें खास बनाती है ना? मेरा मतलब है, वो सिर्फ कोई टेक एक्सपर्ट नहीं है जो बस नई तकनीक का बखान कर रहे हो।
बिल्कुल,
उनकी पत्रकारिता वाली जो बैकग्राउंड है वो उन्हें एक ऑब्जेक्टिव नजरिया देती है। वो सवाल पूछते हैं, वो सिर्फ प्रचार नहीं करते।
सही कहा। और उनका बिजनेस रिपोर्टिंग का जो अनुभव है उससे वो ये समझ पाते हैं कि ये सिर्फ गैजेट्स का मामला नहीं है, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे बिजनेस मॉडल्स को बदलने वाली बात है।
हाँ, और ये भी देखिए कि ये किताब MIT प्रेस की जानी मानी इसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
अच्छा,
ये अपने आप में दिखाता है कि लेखक की पकड़ कितनी मजबूत है और वो मुश्किल चीजों को भी आसान बना सकते हैं। ग्रीनगार्ड एक तरह से हमारे गाइड है इस नई कनेक्टेड दुनिया में।
एक गाइड जो हमें अंदर की कहानी बता रहा है बिना किसी शोर शराबे के। तो इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है, बड़ा मकसद क्या है?
देखिए, ग्रीनगार्ड का लक्ष्य है IoT का एक पूरा 360 डिग्री व्यू देना। किताब सिर्फ क्या है पर नहीं रुकती, वो इसके टेक्निकल बेस, इसके अलग अलग इस्तेमाल,
जैसे कहां कहां,
अरे घर से लेकर फैक्ट्री तक, खेतों तक, फिर इससे होने वाले इकोनॉमिक बदलाव, और हाँ, जो बहुत जरूरी है, इससे जुड़ी चुनौतियां, सोशल एथिकल, सब कुछ।
यानी ये सिर्फ सतह नहीं टटोलती, गहराई में जाती है।
और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, मूल तर्क, वो क्या है?
ग्रीनगार्ड का सबसे बड़ा तर्क ये है कि IoT कोई छोटी मोटी टेक वेव नहीं है, ये एक फंडामेंटल, एक ढांचागत बदलाव है, शायद उतना ही बड़ा जितना प्रिंटिंग प्रेस या इंटरनेट का आना था।
ओह, इतना बड़ा?
हाँ, ये हमारी फिजिकल चीजों को डिजिटल दुनिया से जोड़कर एक बिल्कुल नई रियलिटी बना रहा है।
ये होता कैसे है? मतलब ये फिजिकल और डिजिटल का मिलना, थोड़ा समझाइए। सोचिए, हमारी रोज की चीजें, घर का थर्मोस्टैट, कलाई की घड़ी, फैक्ट्री की मशीनें, ट्रैक्टर, इन सब में छोटे छोटे सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी फिट की जा रही हैं।
अच्छा,
इससे ये चीजें आपस में बात कर सकती हैं, इंटरनेट से बात कर सकती हैं, डेटा भेज सकती हैं, कमांड ले सकती हैं। ग्रीनगार्ड इसे एक तरह का ग्लोबल नर्वस सिस्टम कहते हैं।
नर्वस सिस्टम, वाह।
हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे फिजिकल दुनिया को महसूस कर सकता है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है और उस पर एक्ट भी कर सकता है।
और इसका नतीजा क्या होता है, इस नर्वस सिस्टम का?
नतीजा है डेटा, बहुत सारा डेटा, और इसी डेटा से असली पावर आती है। हम चीजों को ज्यादा एफिशिएंटली चला सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को पहले ही पकड़ सकते हैं और ऐसे नए इनोवेशन कर सकते हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं था। तो किताब असल में ये बड़े सवाल पूछ रही है, IoT आखिर है क्या चीज, ये इतनी बड़ी क्रांति क्यों है, और हमारे जीवन, बिजनेस, समाज पे इसके अच्छे और बुरे दोनों असर क्या होंगे, ये हमें प्रचार से परे ले जाकर असलियत दिखाने की कोशिश करती है।
कमाल है। चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के। इसकी बनावट कैसी है, लेखक हमें इस सफर पर कैसे ले जाते हैं?
ग्रीनगार्ड ने इसे बहुत लॉजिकली स्ट्रक्चर किया है। शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट से, फिर हम टेक्नोलॉजी की डिटेल्स में जाते हैं, उसके बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखते हैं, और आखिर में इसके बड़े असर और फ्यूचर पे बात करते हैं। समझने में काफी आसान है।
तो पहला पड़ाव क्या है, मतलब नींव कहाँ रखी जाती है?
पहला भाग समझ लीजिए चीजों की दुनिया या IoT की बेसिक्स, वो बिल्कुल फाउंडेशन का काम करता है। यहाँ IoT की साफ परिभाषा है, ये उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क है जिनमें सेंसर्स, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी है और जो इंटरनेट पर डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। यहीं पर साइबर फिजिकल सिस्टम का आइडिया आता है, यानी जहां फिजिकल और साइबर वर्ल्ड मिलते हैं। और ग्रीन गार्ड जोर देते हैं कि आईओटी कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कई टेक्नोलॉजीज का एक इकोसिस्टम है।
और इसका इतिहास भी बताते हैं।
हाँ, केविन एश्टन का जिक्र आता है जिन्होंने 1999 में ये टर्म कॉइन किया था।
ठीक है, तो ये हुई परिभाषा और कॉन्सेप्ट, लेकिन ये सब चलता कैसे है? कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इसके पीछे हैं? जैसे गाड़ी का इंजन होता है, आईओटी का इंजन क्या है?
बहुत अच्छा सवाल। अगला भाग आईओटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स या टेक्निकल फ्रेमवर्क इसी इंजन के पुर्जों के बारे में है। इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले तो सेंसर और एक्चुएटर।
सेंसर और एक्चुएटर?
हाँ, सेंसर मतलब वो चीजें जो महसूस करती हैं, टेम्परेचर, मोशन, लाइट वगैरह। ये आईओटी की आंखें कान हैं। और एक्चुएटर वो हैं जो कमांड मिलने पर कुछ करते हैं, जैसे वाल्व खोलना या मोटर चलाना। ये आईओटी के हाथ पैर हैं। और कमाल ये है कि ये अब बहुत छोटे, सस्ते और पावरफुल हो गए हैं।
अच्छा, और ये सब जुड़े कैसे रहते हैं, आपस में बात कैसे करते हैं?
उसके लिए है कनेक्टिविटी। ये आईओटी का नर्वस सिस्टम है। इसमें बहुत कुछ आता है, घरों का वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क जैसे 4G 5G, और कुछ खास लो पावर नेटवर्क भी हैं जैसे लोरावैन, NB-IoT, जो दूर के सेंसर्स के लिए हैं। फिर डिवाइस के अंदर उसका अपना दिमाग होता है, छोटे सस्ते माइक्रो कंट्रोलर।
और इन अरबों खरबों डिवाइस को इंटरनेट पे एड्रेस कैसे मिलता है? सुना था पुराने सिस्टम में एड्रेस कम पड़ गए थे।
बिल्कुल सही, इसीलिए IPv6 इतना जरूरी है। पुराने IPv4 में इतने एड्रेस नहीं थे कि हर बल्ब, हर फ्रिज को जोड़ा जा सके। IPv6 ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसमें अनगिनत एड्रेस हैं।
और डेटा का क्या होता है, ये सारा डेटा जाता कहाँ है?
यहीं पे क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स आते हैं। डिवाइस डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसे स्टोर करने, प्रोसेस करने और उससे मतलब निकालने का भारी काम क्लाउड में होता है। यही आईओटी की असली इंटेलिजेंस और मेमोरी है।
समझ गए, तो ये हुआ टेक्निकल ढांचा। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ दिख रहा है?
हाँ, तीसरा भाग हमारी पर्सनल लाइफ के करीब आता है। घर, शरीर और कार में आईओटी, और साथ में हेल्थ केयर क्रांति पर भी फोकस है। स्मार्ट होम तो अब काफी दिखने लगे हैं, है ना?
हाँ, स्मार्ट स्पीकर्स, लाइट्स, एसी।
बिल्कुल, स्मार्ट थर्मोस्टैट जैसे नेस्ट, जो सुविधा देते हैं, एनर्जी बचाते हैं। लेकिन यहीं पर वो प्रॉब्लम भी आती है कि अलग अलग कंपनियों के डिवाइस आपस में ठीक से बात नहीं करते, इंटरऑपरेबिलिटी, और हमारी प्राइवेसी की चिंताएं भी।
और वो पहनने वाले गैजेट्स, फिटबिट, स्मार्ट वॉच।
हाँ, वेयरेबल्स, ये हमारे हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं। स्टेप्स, हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न, ये प्रिवेंटिव केयर में मददगार हो सकते हैं। हम सब एक तरह से चलते फिरते डेटा पॉइंट्स बन गए।
हाँ, ये तो है।
फिर हैं कनेक्टेड कारें। आज की गाड़ियां तो व्हील्स पर कंप्यूटर नेटवर्क हैं, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट, कार की मेंटेनेंस अलर्ट्स। और हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कारों का बेस भी यही है।
और हेल्थ केयर में, ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें क्या असर हो रहा है?
हेल्थ केयर में तो ये वाकई एक क्रांति ला सकता है। सोचिए, डॉक्टर दूर से मरीज की कंडीशन लगातार मॉनिटर कर सके।
रिमोट मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं।
हाँ, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, या स्मार्ट पिल डिस्पेंसर, सही टाइम पर दवा दें, या AI हमारे हेल्थ डेटा को एनालाइज करके बीमारियों का पहले ही अंदाजा लगा ले। इससे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट संभव हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ डेटा सिक्योरिटी और रेगुलेशन की चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं।
सही बात है। अच्छा, पर्सनल लेवल से आगे बढ़ें तो क्या आईओटी शहरों और इंडस्ट्रीज को भी बदल रहा है?
बिल्कुल, चौथा भाग इसी पर है, शहर और फैक्ट्री में आईओटी, जिसमें इंडस्ट्रियल आईओटी, IIoT और स्मार्ट शहर की बात होती है।
स्मार्ट शहर, ये सुनने में बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, क्या असल में ऐसा हो रहा है?
हाँ, हो रहा है। ग्रीन गार्ड, बार्सिलोना जैसे शहरों का उदाहरण देते हैं। वहाँ आईओटी का इस्तेमाल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, स्मार्ट पार्किंग के लिए, कचरा मैनेजमेंट के लिए, जब कूड़ेदान भर जाएं तो अलर्ट भेजना, और बिजली के स्मार्ट ग्रिड्स के लिए भी।
अच्छा,
मकसद है शहरों को ज्यादा एफिशिएंट, सस्टेनेबल और रहने लायक बनाना। लेकिन हाँ, यहाँ भी गवर्नेंस और सर्वेलेंस यानी निगरानी के सवाल उठते हैं।
और इंडस्ट्री में, जिसे इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं,
वहाँ IIoT का जबरदस्त असर है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर में। किताब में जी का उदाहरण बहुत पावरफुल है।
जी, जनरल इलेक्ट्रिक।
हाँ, वो अपने जेट इंजन और टर्बाइन में सेंसर लगाकर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, मतलब पार्ट्स खराब होने से पहले ही पता लगा लेते हैं। इससे अरबों डॉलर की बचत होती है और सेफ्टी भी बढ़ती है।
अरे वाह, ये तो कमाल है।
इसी तरह खेती में सेंसर जमीन की नमी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मापकर पानी और फर्टिलाइजर का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल करवाते हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर, पैदावार बढ़ती है, वेस्टेज कम होता है। हाँ, इसका जॉब्स पर क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
ये तो है। टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल समझने के बाद अब आते हैं पैसे पर। किताब आईओटी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर क्या कहती है?
हाँ, पांचवा भाग चीजों का व्यवसाय यानी आर्थिक प्रभाव पर ही है, और यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है बिजनेस मॉडल्स में।
वो क्या है?
सबसे इम्पोर्टेंट है सर्विटाइजेशन।
सर्विटाइजेशन मतलब ये क्या है?
इसका मतलब है कि कंपनियां अब सिर्फ प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं कमा रही, बल्कि उस प्रोडक्ट से जुड़ी सर्विस बेच रही हैं। जैसे रोल्स रॉयस जेट इंजन बेचने के बजाय पावर्ड बाय द आर बेचती है, एयरलाइन इस्तेमाल के घंटों का पैसा देती है।
अच्छा, प्रोडक्ट नहीं, उसका आउटकम या सर्विस।
बिल्कुल। या कोई कंपनी एयर कंप्रेसर बेचने की जगह कंप्रेस्ड एयर एज अ सर्विस दे। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि आईओटी डिवाइस लगातार डेटा भेजते रहते हैं, जिससे परफॉर्मेंस ट्रैक होती है।
समझ गया, मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा सर्विस महत्वपूर्ण हो गई है। और जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है उसका क्या?
वो डेटा अपने आप में सोना है। ग्रीन गार्ड कहते हैं कि कई बार डिवाइस से ज्यादा कीमती होता उससे मिलने वाला डेटा। कंपनियां इस डेटा को मोनेटाइज कर रही हैं, बेचकर या उसका एनालिसिस करके नई इनसाइट्स निकालकर। इससे नए बिजनेस बन रहे हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रप्ट हो रही हैं और स्टार्टअप्स के लिए बहुत मौके खुल रहे हैं।
ये सब सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है, एफिशिएंसी, सुविधा, नए बिजनेस। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा, कुछ खतरे।
बिल्कुल, और ग्रीन गार्ड इस पर बहुत ध्यान देते हैं। छठा भाग है ही खतरों का जाल, प्राइवेसी, सिक्योरिटी और एथिक्स पर। ये आईओटी की कह सकते हैं दुखती रग है।
सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता क्यों है?
क्योंकि हर कनेक्टेड चीज हैक हो सकती है। ग्रीन गार्ड इसे आईओटी की अखिलेस हील कहते हैं, सबसे कमजोर कड़ी। हमने सुना है ना, बेबी मॉनिटर हैक हो गए, स्मार्ट कारें रिमोट से कंट्रोल हो गईं।
हाँ, वो मिराई बॉटनेट वाली घटना भी थी।
बिल्कुल, लाखों असुरक्षित डिवाइस से बना बॉटनेट जिसने इंटरनेट पर हमले किए। लेखक का साफ कहना है, सिक्योरिटी कोई बाद में जोड़ी जाने वाली फीचर नहीं है, ये डिजाइन का हिस्सा होनी चाहिए शुरू से।
और प्राइवेसी का क्या, जब हर चीज हमें देख सुन सकती है, डेटा कलेक्ट कर सकती है?
ये बहुत गहरा सवाल है। इतने सारे सेंसर का मतलब है लगातार डेटा कलेक्शन। ये डेटा किसका है, यूज कैसे हो रहा है, क्या हमें पता है, हमारे राइट्स क्या हैं? फिर एल्गोरिदम ने बायस का खतरा है या डेटा का मिसयूज, जैसे फिटनेस ट्रैकर के डेटा से बीमा प्रीमियम बढ़ा देना।
ये तो गंभीर बात है।
हाँ, इसीलिए सोच समझ कर डिजाइन, मजबूत कानून और हम सबकी जागरूकता बहुत जरूरी है।
तो इन चुनौतियों के साथ भविष्य कैसा दिखता है? किताब क्या कहती है आगे के बारे में?
सातवां और आखिरी भाग भविष्य का इसी पर है। इसमें दो बड़े टेक्नोलॉजीज के साथ आईओटी के मिलने की बात है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G।
एआई और 5G वो कैसे मदद करेंगे?
एआई इस भारी मात्रा में आने वाले डेटा को समझने, उससे सीखने में मदद करेगा, और 5G देगा सुपर फास्ट स्पीड और बहुत कम लेटेंसी डिले वाली कनेक्टिविटी। ये सेल्फ ड्राइविंग कारों या रिमोट सर्जरी जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है।
और किताब का फाइनल मैसेज क्या है, निचोड़ क्या है?
सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आईओटी का फ्यूचर पहले से तय नहीं है। ये उन चॉइसेस पर डिपेंड करेगा जो हम सब मिलकर लेंगे, इंजीनियर्स, लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और नागरिक। लक्ष्य होना चाहिए एक ह्यूमन सेंट्रिक, सेफ, प्राइवेट और सबके लिए फेयर आईओटी बनाना।
इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें या थीम्स निकल कर आ रही हैं। पहली तो यही कि फिजिकल और डिजिटल दुनिया अब अलग नहीं रही, वो मिल रही हैं।
एकदम, वो साइबर फिजिकल वाली बात, जैसे हम UPI पेमेंट करते हैं, फिजिकल पैसा तुरंत डिजिटल होकर कहीं और पहुंच जाता है। या गाड़ी के टायर की हवा कम होना, फिजिकल डैशबोर्ड पर लाइट जला देता है डिजिटल। ये कनेक्शन ही आईओटी है।
दूसरी बड़ी बात, डेटा ही असली सोना है, चीजें तो बस मीडियम है।
बिल्कुल, असली वैल्यू उस डेटा स्ट्रीम में है जिससे इनसाइट्स मिलती हैं, ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रेडिक्शंस होता है। भारत में भी देखिए, कंपनियां कस्टमर डेटा को कितना महत्व दे रही हैं।
तीसरा थीम वो सर्विसटाइजेशन वाला शिफ्ट, प्रोडक्ट से सर्विस की तरफ, ये भारत में भी दिख रहा है ना? सब्सक्रिप्शन मॉडल्स कितने कॉमन हो गए हैं?
हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट, अब तो फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी लोग एक मुश्त खरीदने के बजाय लगातार मिलने वाली वैल्यू के लिए पे करने को तैयार हैं। कंपनियों के लिए ये अच्छा है, पर लगातार अच्छी सर्विस देने की जिम्मेदारी भी है।
चौथा अहम मुद्दा, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ये भरोसे की बात है।
और ये चिंता भारत में भी बहुत है, डेटा लीक्स की खबरें, ऐप्स की परमिशन। अगर लोगों को भरोसा नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी अपनाने से हिचकेंगे। ट्रस्ट गया तो सब गया।
और आखिरी थीम, हर सुविधा की एक कीमत है, वो एफिशिएंसी और कंट्रोल वाली दोधारी तलवार।
सही, स्मार्ट मीटर बिजली बचाएगा पर ये भी बताएगा कि आप कब घर पर हैं कब नहीं। कैमरे सुरक्षा देंगे पर निगरानी भी बढ़ाएंगे। हमें हमेशा सोचना होगा कि क्या पा रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं। क्या ये ट्रेड ऑफ सही है?
किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे कुछ यादगार पंक्तियां या विचार।
हाँ, जैसे एक विचार है कि IoT चीजों के बारे में कम और फिजिकल दुनिया के लिए एक डिजिटल नर्वस सिस्टम बनाने के बारे में ज्यादा है। ये उन चीजों को आवाज देता है जो पहले खामोश थीं। ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ गैजेट से बढ़कर है।
और बिजनेस पर असर इस विचार में है। IoT इकोनॉमी में बिजनेस मॉडल पलट जाते हैं। वैल्यू अब सिर्फ एक बार की बिक्री में नहीं बल्कि कनेक्टेड प्रोडक्ट से लगातार मिलने वाले डेटा और सेवाओं में है। ये सर्विसटाइजेशन का निचोड़ है।
सिक्योरिटी और प्राइवेसी की गंभीरता इस बात में है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी IoT में ऊपर से जोड़ी जाने वाली चीजें नहीं है, ये वो नींव है जिस पर इसे बनना चाहिए। भरोसे के बिना ये पूरा कनेक्टेड ढांचा ढह जाएगा। ये IoT की अस्तित्व की चुनौती है।
और वो संतुलन वाली बात, IoT से मिलने वाली हर सुविधा के लिए हमें पूछना चाहिए कि हम बदले में क्या दे रहे हैं। ये लेन देन ही IoT युग का केंद्रीय सामाजिक और नैतिक सवाल है।
ये हमें अलर्ट करता है।
आखिर में एक बहुत प्रैक्टिकल बात,
सबसे सफल IoT वही है जो असली लोगों की असली समस्याओं को हल करते हैं, न कि वो जो सिर्फ सबसे नई तकनीक दिखाते हैं। मतलब फोकस इंसान पे होना चाहिए।
तो ये सब जानने के बाद एक आम इंसान के तौर पर या बिजनेसमैन या पॉलिसी मेकर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? इन आइडियाज का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है?
देखिए, आम लोगों के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस। कोई स्मार्ट डिवाइस खरीदें तो सोचें क्या जरूरत है, सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें, अपडेट्स करें, अपने डेटा पर थोड़ा कंट्रोल रखें।
समझदारी से इस्तेमाल करें। और बिजनेस,
उन्हें IoT को सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानना होगा। सोचना होगा कि क्या वो भी सर्वटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू कर सकते हैं, डेटा का सही इस्तेमाल करके कस्टमर से बेहतर जुड़ सकते हैं।
और बड़े लेवल पर समाज और सरकार के लिए
यहाँ जरूरत है सोच समझ कर नियम बनाने की, डेटा ओनरशिप, प्राइवेसी राइट्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर। शहरों की प्लानिंग में IoT को ध्यान में रखना होगा, फायदे और नुकसान दोनों। और सबसे जरूरी, आम लोगों को इस डिस्कशन में शामिल करना होगा।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकल गया है? वो एक दो बातें जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए।
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि IoT क्रांति तो होकर रहेगी, ये तय है, लेकिन इसका रूप कैसा होगा ये हम तय कर सकते हैं। ये सिर्फ गैजेट्स नहीं, ये दुनिया बदलने वाला एक फंडामेंटल शिफ्ट है।
और मेरे लिए सबसे अहम यह है कि फायदे और जोखिम साथ साथ चलते हैं, खासकर प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ऑटोनॉमी को लेकर। असली चुनौतियां टेक्निकल कम, ह्यूमन और एथिकल ज्यादा हैं। हम आज जो चुनेंगे वही कल बनेगा।
बिल्कुल, और सैमुअल ग्रीनगार्ड की ये किताब इस मुश्किल सब्जेक्ट का एक बहुत ही क्लियर, कंसाइज और यूजफुल मैप देती है। टेक, बिजनेस और सोशल इम्पैक्ट को एक साथ लाकर समझाती है, यही इसकी खासियत है। ये समझने के लिए एक एसेंशियल रीड है कि हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया कैसे एक हो रही हैं।
जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि हम सुविधा और आसानी के लिए अपनी कितनी प्राइवेसी और ऑटोनॉमी कुर्बान करने को तैयार हैं, और क्या ये सौदा हमेशा हमारे हित में होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।